सर्वेश्वर का बकरी सन 74 और असगर वजाहत की वीरगति 81 अपने कथ्य और नाट्य प्रयोग दोनों दृष्टियों से जनवादी है। प्रयोगवाद और आधुनिकतावाद के वैयक्तिक घेरे को तोड़कर बकरी में आम आदमी के यथार्थ को संप्रेषित करने की कोशिश की गई है। नाटककार के शब्दों में यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। बकरी प्रतीक है गांधीवादी आदर्शों का, जिनकी हत्या स्वयं गांधी के अनुयायियों ने की है। इसमें जनता के शोषकों ने बकरी बना दिया है, लेकिन इसके भीतर से जनता में बदलाव ले आने की आग भरी गई है। नौटंकी शैली और पैरोडियों ने नारेबाजी के बावजूद उसे रोचक, स्फूर्तिमय और महत्वपूर्ण बना दिया है। असगर वजाहत के वीरगति के साथ मृणाल पांडे ने जो राम रुचि राखा नटरंग के एक ही अंक 81 में प्रकाशित हुए हैं, दोनों नाटक विजय दान देथा द्वारा संग्रहित एक राजस्थानी लोक गाथा खोजी पर आधारित है, किंतु दृष्टिभेद के कारण दोनों की परिणतियां भिन्न भिन्न हो गई हैं। दोनों ने ही वर्ग को दृष्टि में रखा है। मृणाल मन्ना सेठ के उस अंतर विरोध को जो अपने ही वर्ग से नफरत करता है और पुनः उसी में लौट आता है तीखे ढंग से उभारती है, किंतु नाटक लेखिका की अपनी वर्गीय दृष्टि के हिसाब से मायावाद, भाग्यवाद या यथास्थितिवाद में बदल जाता है। असगर के पास एक साफ सुथरा नजरिया है जो पूंजीवादी व्यवस्था पर, उसकी क्रय शक्ति पर जो स्वयं सत्ता को खरीद सकती है, गहरी चोट करती है। इतने सारे प्रयोगों के बावजूद हिंदी नाटकों की उपलब्धियां कम नहीं है। प्रयोग पर दृष्टि टिकी होने के कारण नाटक सामान्यतः व्यक्तिकता के संकीर्ण कटघरे को नहीं तोड़ सके हैं, और यहाँ पर भ्रष्टाचार आदि पर सपाट कथन है, वहां प्रयोग नहीं के बराबर है। सामाजिक यथार्थ के जटिल संदर्भों तथा तदनुकूल नाट्य प्रयोगों के अभाव में पश्चिम के नाटकों की समकक्षता में खड़ा होना मुश्किल है। उपन्यास गद्य पद्य की अन्य विधाओं की भांति इस काल के उपन्यासों में भी प्रगति प्रयोग का समारंभ एक साथ ही होता है, किंतु उनके बीच विषमता की एक स्पष्ट रेखा खींची हुई है। इस विधा का जन्म ही मध्यवर्गीय सामाजिक चेतना के उन्मेष के फलस्वरूप होता है। इसकी अनिवार्य मांगों के तहत लेखक को एक दृष्टिकोण लेकर चलना पड़ता है। सन 41 में प्रकाशित दो उपन्यासों शेखर एक जीवनी और दादा कामरेड में प्रयोग और प्रगति की दो जीवन दृष्टियां साथ उभर कर आई हैं, किंतु शेखर एक जीवनी के शक्तिशाली प्रयोग, अभिनव रूप विन्यास और विद्रोह मूलक वैयक्तिक आग्रहों ने अपनी ओर लोगों का ध्यान बरबस आकृष्ट किया है। परवर्ती प्रयोग मूलक उपन्यासकारों में न तो अस्मिता का ऐसा तीखा बोध था और न इसे कलात्मक रूप में रेखांकित करने की रचनात्मक क्षमता। वस्तुतः व्यक्ति स्वातंत्र मूलक तार्किक निष्कर्षों की सभी संभावनाओं को यह निःशेष कर देता है। ऐसी स्थिति में आगे के प्रयोगवादी उपन्यास प्रायः निर्जीव दिखाई देने लगते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव प्रेमचंद की रचनाओं पर दिखाई पड़ता है। प्रमाण स्वरूप कुछ कहानियों और उपन्यासों का उल्लेख किया जा सकता है। अपने निबंधों में भी वे इसका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, किंतु इस समय तक इसका व्यवस्थित अध्ययन न तो प्रेमचंद ने किया था और न तो किसी अन्य रचनात्मक साहित्यकार ने। फिर भी उनके जीवन और उपन्यासों की जमीन ऐसी थी जिस पर यह धारा स्वयं प्रवाहित हो चली थी, किंतु बाद में इस विचारधारा का प्रभाव बढ़ता गया और कुछ लोगों ने इसका गहरा अध्ययन ही नहीं किया बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हो गए। इस संदर्भ में राहुल सांकृत्यायन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यशपाल ने गांधीवाद की शव परीक्षा की और अपनी रचनाओं को मार्क्सवादी अवधारणाओं पर टिकाया। रांगे राघव भी इस धारा के समर्थक थे। कविता की सांस्कृतिक राष्ट्रीय धारा के समानांतर उपन्यासों में सांस्कृतिक सामाजिक धारा का विकास हुआ। वृंदावन लाल वर्मा, हजरीप्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं, तो अश्क, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर दूसरी धारा के। सन 50 के बाद प्रयोग प्रगति की धारा का मिला जुला रूप आंचलिक उपन्यासों में मिलता है। इसी दौर में कुछ लघु उपन्यासिक प्रयोग भी हुए। सन 60 में कविता की तरह उपन्यासों में भी नया मोड़ आता है। पिछले दो दशकों में आधुनिकतावादी और जनवादी धारा दिखाई देने लगती है। मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा आदि पहली श्रेणी के उपन्यासकार हैं, तो अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडे आदि दूसरी श्रेणी के। प्रयोगवादी उपन्यास। प्रेमचंद के जमाने में ही जैनेन्द्र एक सीमित अर्थ में व्यक्ति स्वातंत्र्य की समस्या को अपने उपन्यासों का वर्ण विषय बनाते थे, किंतु रूढ़ सामाजिक संस्कार व्यक्ति स्वातंत्र्य को खुलकर सामने नहीं आने देते। उसके सभी नारी पात्र सामाजिक मर्यादाओं को बनाए रखने और अपनी पहचान को रेखांकित करने के द्वंद्व में उलझे रहते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मयातना के अतिरिक्त अन्य कोई राह शेष नहीं बचती। वे समाज को न तोड़कर स्वयं टूटते हैं। टूटना उनकी नियति है और अनिर्मित उनकी मंजिली। नियति, ईश्वर, धर्म आदि में अटूट आस्था के कारण उसके उपन्यास आधुनिक नहीं बन पाते। अनेक अस्तित्व मूलक प्रश्नों को लेकर वे रोमांटिक एगोनी का रूप ले लेते हैं। फ्रायड के अवचेतन भाव की प्रधानता उन्हें एक आयामी बना देती है। अज्ञे के शेखर एक जीवनी 41 में मूलतः समस्या व्यक्ति स्वातंत्र की ही उठाई गई है। क्रांतिकारी जैनेन्द्र की सुनीता में भी है और अज्ञे के शेखर में भी। दोनों ही एक रास्ता को तोड़ने के लिए प्रेम का एडवेंचर लेते हैं। हरि प्रसन्न की एक रास्ता वैवाहिक जीवन की है और शेखर की अविवाहित जीवन की। पर शेखर जटिल जीवन की गहराइयों में डूबता उतराता, अनेक प्रकार के प्रयोग करता, पारंपरिक मूल्यों को ढहाता, एक विद्रोही का व्यक्तित्व धारण कर लेता है और जो अंततो गत्वा अपने खिलाफ जाता है। शेखर विद्रोही रोमांटिक विद्रोही नहीं, निहिलिस्ट विद्रोही है। रोमांटिक विद्रोही के नकार के पीछे सामाजिक आध्यात्मिक उद्देश्य होता है, पर निहिलिस्ट विद्रोही केवल निषेध जानता है, अमोघ निषेध। रोमांटिक विद्रोही अपने अहम को अतिक्रमित करता रहता है, पर निहिलिस्ट विद्रोही अपने आत्यंतिक अहम से चलकर उसी में लौट आता है। अमोघ निषेध से वह अपनी अस्मिता की पहचान कराता है, वह इसीलिए है कि विद्रोही है। शेखर के विद्रोह का मॉडल है तुर्गनेव के पिता और पुत्र का नायक बाजरोव। अज्ञे ने बाजरोव को नियतिवाद और शेखर को स्वतंत्र तथा संपूर्ण मानव बनने की दिशा में अग्रसर होने वाला कहा है। स्वतंत्र तो वह चरम कोटि का है, किंतु मानव तो वह आधा अधूरा भी नहीं है। बाजरोव कला, संस्कृति, धर्म के परंपरागत मूल्यों को नकारता है। नकार उसका भी अमोघ है, किंतु यह नकार एक अस्थाई दृष्टिकोण है, न कि शेखर की तरह चिरंतन फलसफा। एक जगह वह कहता है, फिलहाल नकार सर्वाधिक उपयोगी है, इसलिए हम अस्वीकार करते हैं। बाजरोव इतिहास की एक विशेष परिस्थिति में यह फैसला लेता है, किंतु शेखर इतिहास को ही अस्वीकार करता है। वह एतादृशत्व मात्र का विरोधी है। विद्रोही व्यक्ति कर्ण के कवच कुंडल की तरह विद्रोह को लेकर पैदा होता है, परिस्थितियां उसे नहीं बनाती। विद्रोह अनंत है, नित्य है। इसके तीन अस्त्र हैं, प्रेम, बौद्धिक घृणा और घोर स्वतंत्र। स्वतंत्र तो वह चरम कोटि का है, किंतु मानव तो वह आधा अधूरा भी नहीं है। बाजरोव कला, संस्कृति, धर्म के परंपरागत मूल्यों को नकारता है। नकार उसका भी अमोघ है, किंतु यह नकार एक अस्थाई दृष्टिकोण है, न कि शेखर की तरह चिरंतन फलसफा। एक जगह वह कहता है, फिलहाल नकार सर्वाधिक उपयोगी है, इसलिए हम अस्वीकार करते हैं। बाजरोव इतिहास की एक विशेष परिस्थिति में यह फैसला लेता है, किंतु शेखर इतिहास को ही अस्वीकार करता है। वह एतादृशत्व मात्र का विरोधी है। विद्रोही व्यक्ति कर्ण के कवच कुंडल की तरह विद्रोह को लेकर पैदा होता है, परिस्थितियां उसे नहीं बनाती। विद्रोह अनंत है, नित्य है। इसके तीन अस्त्र हैं, प्रेम, बौद्धिक घृणा और घोरतम यातना। वह कहता है, मैं अपने पहले बीते हुए असंख्य युगों का निचोड़ हूँ। नृजाति के उच्चतम आदर्शों का केंद्रीभूत पुंज भी मैं ही हूँ और मैं नया हूँ, अपूर्व हूँ। जाहिर है इसके पीछे नित्से का अतिमानव बोल रहा है, पर नित्से का अतिमानव सर्वथा मूल्यच्युत नहीं है। चूंकि परिस्थितियों से उसका सरोकार नहीं है, इसलिए वह अपने को अपूर्व और नया सिद्ध करने के लिए विद्रोह करता है। शेखर क्रांतिवादी नहीं है और न उसके पास क्रांति के मौलिक आदर्श हैं। क्रांति का संबंध राजकीय सत्ता के उस परिवर्तन से है जिसमें संपूर्ण प्रणाली बदल जाती है। हाँ, वह निहिलिस्ट विद्रोही अवश्य है। वैसा निहिलिस्ट विद्रोही नहीं जिसमें नाश और निर्माण का अंतर विरोध मिलता है, ऐसा निहिलिस्ट जिसमें नाश का आग्नेय उत्साह है। शेखर विद्रोह करता है माँ के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, शिक्षा के विरुद्ध, माँ बाप द्वारा निर्णित विवाह के विरुद्ध, हर चीज के विरुद्ध। विद्रोहियों के जिन तीन हथियारों प्रेम, घृणा और यातना का उल्लेख करता है उसका प्रयोग भी वह नहीं कर पाता। प्रेम और घृणा में विभक्त उसका व्यक्तित्व घृणा की ओर ज्यादा उन्मुख दिखाई पड़ता है। अपने विभाजित व्यक्तित्व की बात स्वयं लेखक ने उठाई है। संभवतः व्यक्तित्व के विभाजन की चर्चा सबसे पहले इसी उपन्यास में उठाई गई है जो उसकी कविताओं में भी अभिव्यक्त हुई है। प्रेम के लिए समर्पण अपेक्षित है और अहम की परिणति घृणा में होती है। उसका अहम प्रेम से कहीं अधिक भारी पड़ता है। अहम के रक्षार्थ वह प्रेम प्रसंगों में भी अत्यंत क्रूर हो जाता है। प्रेम का मंगता तो वह है लेकिन दाता नहीं है, इसलिए जिम्मेदार नहीं है। उसके अस्तित्व के लिए प्रेम यौनाकांक्षा अनिवार्य है। प्रेम चाहे किशोरी का हो अथवा आंद्रेजीत के किशोर का, वह अपने लिए प्रेमास्पद को निचोड़ लेना चाहता, सिर्फ अपने लिए। शशि उसके लिए टूट जाती है किंतु वह उसकी मृत्यु में मुक्ति देखता है। फिर उसकी स्मृतियों की सड़ी लाश ढोता हुआ सृजनात्मक होना चाहता है। उसकी यातना ग्रस्तता संवेदना का स्तर नहीं ले पाती, अतः उसके तीनों हथियारों में घृणा का अस्त्र ही हाथ लगता है। इससे औरों पर पाशविक आक्रमण करने में सुविधा हुई है, लेकिन सांड चढ़ी हुई इसकी धारा का अंतिम शिकार उपन्यास होता है। अपने समस्त संरचनात्मक विशेषताओं और प्रयोगों, तरासी हुई भाषा, कलात्मक विखराव, चेतना प्रवाह, पूर्व दीप्ति, अभिनव काल विन्यास आदि के बावजूद जीवन के बृहत्तर और गहन आयामों को न समेट पाने के कारण वह यह व्यक्ति वैचित्र्यवाद का नमूना बनकर रह जाता है। ऐसा क्यों? इसकी रचना प्रक्रिया के छीर घट में पानी पड़ गया है। लेखक टीएस इलियट की इस बात से सहमत है कि भोगने वाला प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर होता है, किंतु शेखर और इसके लेखक में सामान्यतः अंतराल नहीं है। अतः यह व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज तो बन जाता है, किंतु इतिहास के कट जाने के कारण समाज का दस्तावेज नहीं हो पाता। इस क्षति की पूर्ति कलावाद से की गई है। यद्यपि प्रेम संबंधी अपने अंतर विरोधों को वह शिक्षा संस्कारों की फलश्रुति कहता है, किंतु यह समस्त उपन्यास पाश्चात्य शिक्षा संस्कारों से आवेष्टित होने के कारण अपनी जमीन और स्वस्थ पारंपरिक संस्कारों के कटा हुआ इतिहास की धारा को ही गलत मोड़ देना चाहता है। तुर्गनेव, रोमारोला, नित्से, कामू के विचार इतिहास के एक खास बिंदु पर उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनके विचारों में एक ऊर्जा और असलियत का आकर्षण है। किंतु शेखर एक जीवनी ऐसी विदेशी कलम है जो देश में बेमौसम लगाई गई है। नदी के द्वीप 1951 उसका दूसरा प्रयोगवादी उपन्यास है, जो अपने जादुई शिल्प और क्रीड़ापरक प्रेम दर्शन के कारण पाठक को एक साथ ही चमत्कृत और शिथिल बना देता है। इसमें संदेह नहीं कि उत्तर स्वच्छंदतावाद काल में कला के प्रति इतना सचेत और अनुशासित रचनाकार दूसरा नहीं है, किंतु यह भी निर्विवाद है कि भावभूमि का इतना अधिक संकोच, जनजीवन से इतनी गहरी असंपृक्ति, देशकाल की समस्याओं से इतना गहन निर्वेद शायद ही कहीं मिले। पर इसकी शिल्पगत भव्यता आंतरिक कुरूपता को आच्छादित नहीं कर पाती। शेखर के व्यक्तित्व में एक विशिष्ट वर्चस्व है, चाहे वह हास्योन्मुखी ही क्यों न हो। स्वातंत्र की तलाश है जो बाधित होकर एक अर्थ देती है, किंतु इसमें तलाश नहीं पलायन है। इस तलाश या पलायन में कोई बाधा नहीं है। सभी पात्र अपने अपने चौखटे में जड़े हुए विचारों की अमूर्तता में धूमिल और अव्याख्याय हैं। भुवन शेखर का कैरिकेचर है तो रेखा शशि का, चंद्रमाधव और गोरा फालतू पात्र हैं। विशेष रूप से चंद्रमाधव का सृजन एक विशिष्ट विचारधारा का विरोध करने के लिए किया गया है, किंतु उससे भुवन के व्यक्तित्व में कुछ जुड़ता नहीं। छीजता अवश्य है और रेखा वह तो केवल कोटेशन में फुलफिलमेंट का कल्ट जीती है। इस तरह यह एक रीतिबद्ध उपन्यास होकर रह जाता है। अपने अपने अजनबी 1961 अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है, जिसमें एक प्रकार की धार्मिक दृष्टि संपन्नता दिखाई पड़ती है। अपने पहले दोनों उपन्यासों में अज्ञेय ने यौन कल्ट की स्थापना के साथ साथ एक मसीहाई दृष्टिकोण भी अख्तियार किया है। अपने अपने अजनबी इसी की फलश्रुति है। यह अस्तित्ववादी उपन्यास नहीं है और न तो मृत्यु के साक्षात्कार का उपन्यास है। इसमें मुख्य समस्या स्वतंत्रता के कारण की है, जो संतरास, अकेलापन, बेगानगी, मृत्युबोध, अजनबीपन आदि से सहज ही संयुक्त हो गया है। सेल्मा और योके को एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया है कि स्वतंत्रता की समस्या अपने आप उभर आती है। यह समस्या अस्तित्ववादी समस्या ही है, पर इसका समाधान दूसरा है। न तो योके अस्तित्ववादी है न सेल्मा। सेल्मा ने योके से कहा है, तुम जो अपने को स्वतंत्र मानती हो वही सब कठिनाइयों की जड़ है। न तो हम अकेले हैं न हम स्वतंत्र हैं, बल्कि अकेले नहीं है और हो नहीं सकते, इसलिए स्वतंत्र नहीं है और इसलिए चुनने या फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है। ऐसी सब स्वतंत्रताओं की कल्पना निरा अहंकार है। स्वतंत्रता को अहंकार के जोड़कर अज्ञेय ने अस्तित्ववादी स्वतंत्रता के मूल अर्थ को ही बदल दिया है। उनके मत से जैसे उपन्यास से प्रतीत होता है, स्वतंत्रता में अहंकार का घुस जाना स्वाभाविक है। सेल्मा ने साझे से दूसरे को अपने से संबद्ध करके क्षण को परंपरा से संपृक्त करके नया अर्थपूर्ण जीवन दिया। इसके अभाव में योके स्वतंत्रता के नाम पर आत्महत्या को चुन सकी। यह दर्शन मूलतः भारतीय है, पर मेटाफिजिकल होने की वजह से इसमें सब कुछ बौद्धिक स्तर पर घटित होता है, स्वयं जीवन जीने के स्तर पर नहीं। प्रयोग की दृष्टि से भारती का सूरज का सातवां घोड़ा 52 में महत्वपूर्ण है। वह भारती के तंत्र और अज्ञेय के मंत्र से कीलित तथा अपनी सज्जा में चमत्कारिक है। अज्ञेय का कहना है कि यह केवल प्रयोग कौतुक के लिए नहीं है। इसका ध्वन्यार्थ है कि वह यह चाहे केवल कौतुक के लिए न हो पर उसके लिए भी है। अलिफ, लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सा गो माणिकमुला के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में अनध्याय है, नाटक के गर्भांग का अंकावतार की तरह। इसमें संबद्ध कहानी पर बहस होती है, जिसमें धारदार व्यंग्य का सार्थक समावेश हुआ है। अजीब करिश्मे हैं इसमें, कोई चाहे इसे सुखांत समझ ले या दुखांत। कहानियों के शीर्षक भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं, नमक, अदायगी, घोड़े की नाल, काले बेंट का चाकू आदि। वस्तुतः यह निम्न मध्य वर्ग की अर्थाभाव जन्य प्रेम कुंठा का उपन्यास है। इसमें लंबे काल को लघु काल में समेट लिया गया है। निष्कर्षवादी कहानियों से एक प्रकार के यथार्थ का आभास पैदा किया गया है, किंतु सूरज का सातवां घोड़ा अध्याय उन मार्क्सवादी लेखकों के पैटर्न पर लिखा गया है जो एक पूर्व निर्धारित फतह के विश्वासी हैं और भारती ने जिनका खंडन किया है। अतः इसका आदर्शवाद समापन खंडित व्यक्तित्व का सूचक है। यूं गुनाहों के देवता के लेखक की वह विकासात्मक मंजिल है। प्रभाकर माचवे ने कई छोटे छोटे प्रयोगात्मक तेवर वाले उपन्यासों की रचना की, परंतु 51 में, एक तारा 52 में, द्वाभा 55 में, सांचा 56 में, जो 64 में, किशोर 69 में, 30-40-50 72 में और दर्द के पैबंद 75 में, परंतु में हल्का सा प्रयोगात्मक स्पर्श है चेतना प्रवाह का, किंतु वह भी नया नहीं है। इसमें पूंजीवादी सेठ द्वारा एक गरीब विधवा के यौन परक शोषण की कहानी है। शंकराचार्य इलियट सोपेनहावर के उदाहरणों से लेखक की पठनीयता और उपन्यास की अपठनीयता का पता लगता है। द्वाभा एक अरोमांटिक सामान्य उपन्यास है। सांचा में यंत्रीकरण के विरुद्ध प्रयोगवाद व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया है। जो में निग्रो और श्वेत जातियों के संघर्ष में वहसीपन का पर्दाफाश करते हुए मानवता का पक्ष लिया गया है। अपने शीर्षक अनगढ़पन और ढेर के उदाहरणों में यह प्रयोग भी करता चलता है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की बहती गंगा 52 में काशी के 200 वर्षों के अविच्छिन्न जीव प्रवाह को 17 तरंगों में आकलित किया गया है, अर्थात इसमें कुल 17 कहानियां हैं। अपने में पूर्ण स्वतंत्र फिर भी धारा तरंग न्याय से वे एक दूसरे से संबद्ध भी हैं। इनका नायक काशी है, जिसमें राजा बलवंत सिंह, नागर भंगड़ गुंडे, कलावंत गाड़ीवान, गंगा पान वाली आदि अनेक तबके के पात्र हैं। पर सब अलग अलग होते हुए भी अपनी मस्ती, बेफिक्री, लापरवाही, पुरानेपन आदि में एक और यही है काशी। काशी की मस्ती को बिंबित करने वाली जीवंत बोली बानी में 200 वर्षों का गत्यात्मक इतिहास साकार हो उठा है। गिरिधर गोपाल के चांदनी रात के खंडहर 54 में 24 घंटे की जिंदगी विश्लेषित की गई है। इसमें 5 वर्षों के बाद लंदन से शिक्षा ग्रहण करके लौटे हुए नायक के मध्यवर्गीय परिवार की खोखली आर्थिक स्थिति का मार्मिक चित्र खींचा गया है, जिसके लिए नायक बसंत खुद जिम्मेदार है। 24 घंटे की कालावधि के कारण चुनी हुई परिस्थितियों, घटनाओं, मनोदशाओं पर तीव्र प्रकाश डालकर उसे प्रभावशाली बनाने में सुविधा हुई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोया हुआ जल 54 में एक यात्री शाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है। इसमें अंतश्चेतना की भूख, प्यास, आकुलता, अतृप्ति का चित्रण है, जो व्यक्ति मानस की अशांति क्षोभ के कारण है। चेतना प्रवाह शैली और सीनेरियो टेक्निक में लिखा गया यह प्रतीकात्मक उपन्यास है। शैली चमत्कार के कारण ही उसका महत्व है। प्रगतिवादी उपन्यास। कविता की तरह उपन्यास में भी प्रगतिवाद की धारा चल निकली। इसके प्रवर्तन का श्रेय यशपाल 1903 से 76 को है। वे क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। 38 में जेल से छूटने के बाद मार्क्सवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हो गए और इसके प्रचारार्थ विप्लव नामक पत्र 38 भी निकाला। सच्चा क्रांतिकारी इसी दिशा का वर्णन कर सकता था। समग्रतः यशपाल को प्रेमचंद परंपरा का कथाकार कहा जाना चाहिए। प्रेमचंद की विषय वस्तुओं को यशपाल ने नहीं अपनाया। उन्हीं विषय वस्तुओं का परिग्रहण परंपरा नहीं है और बदली हुई परिस्थितियों में न हो सकती है, किंतु यशपाल की संवेदना प्रेमचंद की संवेदना का ही गुणात्मक परिवर्तन है। कहना न होगा कि उनके सभी उपन्यासों में इसी विचारधारा का प्राधान्य है। यह दूसरी बात है कि उनमें कला और अवधारणा की द्वंद्वात्मकता के जटिल संबंधों का निर्वाह नहीं हो पाया है। पहला उपन्यास दादा कामरेड 41 में लेखक की अपनी ही विचारधारा का रूपांतरण है, क्रांतिकारी आतंकवाद से मार्क्सवाद में। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। इसके पहले प्रेमचंद प्रेमाश्रम और कर्मभूमि के रूप में राजनीतिक उपन्यास पेश कर चुके थे। वे गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थे और दादा कामरेड मार्क्सवादी विचारधारा पर। दादा और कामरेड अलग अलग व्यक्ति हैं। दादा चंद्रशेखर आजाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और कामरेड स्वयं यशपाल का। दादा अपने आतंकवाद के प्रति अडिग हैं, किंतु कामरेड मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार मजदूरों का संगठन और पूंजीवादियों का विरोध करता है। मजदूर वर्ग की एक रेखीय विजय बड़ा ही भद्दा और सपाट सिद्धांत है। यशपाल इसकी जटिलता में नहीं बैठते। सैल की कथा को जोड़कर यौन नैतिकता को एक नया आयाम देने का प्रयास भी नारी को व्यक्तित्व नहीं दे पाता, क्योंकि परंपरा मुक्त ढंग से सुनीता की तरह क्रांतिकारी हरीश के सामने निरावरण होकर भी वह प्रेरणा का ही काम करती है। नारी क्या केवल प्रेरणा है? प्रेम को कोरे जीव शास्त्र से बांध देना उसे मनोवैज्ञानिक जटिलता से मुक्त कर देता है। देशद्रोही 43 में का सरोकार सन 42 में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध छोड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया की ताकतें दो शिविरों में विभक्त हो गई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की खिलाफत के लिए इस अवसर का चुनाव किया, चूंकि इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से रूस भी युद्ध में शरीक हो गया था। इसलिए भारतीय कम्युनिस्टों ने राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने का निश्चय किया। देशद्रोही इसी नीति के समर्थन में लिखा गया है। उस नीति की वास्तविकता के बारे में कम्युनिस्ट भी संदिग्ध हो उठे हैं। संदिग्ध नीति के बारे में लिखा गया उपन्यास असंदिग्ध कैसे हो सकता है? इसका नायक डॉक्टर खन्ना एक कमजोर, ऋणहीन और ढुलमुल और विलासी पात्र है, जिसे लेखक एक परिस्थिति में फेंक कर निकाल लेता है और फिर दूसरी परिस्थितियों में डालता निकालता रहता है। पाठकों पर न तो उसकी वैचारिकता की छाप पड़ती है और न कमजोर कार्यक्रमों पर। विभिन्न देश और जाति की स्त्रियों के प्रति उसके जाति विलास और संपृक्ति का चटकीला वर्णन उसकी कामरेडी छवि को धूमिल बना देता है। यदि लेखक अवधारणाओं को अनुदित करने का प्रयास न करता और जाति विलास के प्रति गहन मध्यवर्गीय आसक्ति न रखता तो कलात्मक रचाव की दृष्टि में इसमें काफी संभावनाएं थी। जो जगह जगह वर्णन की काल्पनिक यथार्थता और प्रसंगों की रोचकता में दिख पड़ती है। पार्टी कॉमरेड 1976। अपेक्षाकृत साफ सुथरा उपन्यास है, किंतु मताग्रह और यौनाशक्ति इसमें भी कम नहीं है। गीता भावरिया का हृदय परिवर्तित कर उसे बलवेदी पर चढ़ा दिया है। गोया साम्यवादी होने के लिए छुरे की नोक सी तीखी आंखों वाली लड़कियों का आकर्षण कोई बुनियादी बात हो। मनुष्य के रूप 1949 में व्यवस्था और अर्थ मनुष्य को अमनुष्य बनाने में कितनी घिनौनी भूमिका अदा करते हैं, इसका अच्छा खासा चित्रण है। झूठा सच पहला भाग 58 में, दूसरा भाग 60 में के प्रकाशन ने सिद्ध कर दिया कि यशपाल बहुत विशाल फलक पर जीवन के विविध रूपों, आयामों, समस्याओं, जटिलताओं को अपने ढंग से प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इतनी विशालता, इतनी वैविध्य, इतने प्रश्न, इतनी समस्याएं हिंदी के किसी एक उपन्यास में नहीं उठाई गई है। इसे अपने युग का औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी जा सकती है। यद्यपि इसमें जितनी व्याप्ति है उतनी गहराई नहीं है। उपन्यास दो भागों में, वतन और देश और देश का भविष्य में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग के आवश्यक में लिखा गया है, देश के सामयिक और राजनैतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यशपाल जैसी ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी उपन्यासकारों में कम ही लोगों को प्राप्त है। इसलिए देश विभाजन की भूमिका पर इतनी बड़ी कृति की परिकल्पना यशपाल ही कर सकते थे। विभाजन के बाद देश के लाखों निरपराध आदमियों को तलवार के घाट उतार दिया गया। लाखों लोग गृह विहीन, कुटुंबहीन हो गए। अनेक प्रकार की पाशविक यंत्रणाओं से जूझते हुए इन लोगों ने अपने लिए तथा स्वतंत्र देश के लिए अनगिनत समस्याएं पैदा की। मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग एक दशक 1946 से 56 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। यशपाल ने इसी दशक का औपन्यासिक इतिहास लिखा है। वतन और देश में जो वतन था वह देश नहीं रह गया और जो देश था वह वतन नहीं रह गया। वतन और देश के बीच विभाजक रेखा खींचने की जिम्मेदारी किसकी है? अंग्रेजी या स्वार्थपरता से घिरे देशभक्तों की? राजनीति स्वार्थपरता को धर्मांधता का रंग देकर जो दंगे हुए उनकी अनेक रोमांचक कहानियां इसमें मिलेंगी। हिंदुओं मुसलमानों के पारस्परिक सौहार्द और संबंधों का बदलाव देश की अखंडता को ही ध्वस्त नहीं करता है बल्कि बहुत से उच्चतर मूल्यों को भी समाप्त कर देता है। यशपाल ने ध्वस्त मूल्यों के साथ साथ नए मूल्यों का भी चित्रण किया है। दूसरे भाग में दंगे से बचे कुछ पात्रों द्वारा देश के भविष्य के संदर्भ में बनते बिगड़ते मूल्यों को उजागर किया गया है। इस तरह यह उपन्यास देश के एक दशक का प्रामाणिक दस्तावेज बन जाता है। उपन्यास का पहला भाग देश की यथार्थ विघटन को रूपायित करता है तो दूसरा भाग संघटन को। विघटन का दृश्य उपस्थित करने के लिए जिस यथार्थवादी दृष्टि की आवश्यकता होती है वह यशपाल को प्राप्त है। इसलिए प्रथम खंड अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक, यथार्थ और मार्मिक बन पड़ा है। पर संघटन के लिए यथार्थ की अपेक्षा विधायक कल्पना की जरूरत होती है। कहना ना होगा कि यशपाल में इसकी कमी दिखाई पड़ती है। इसलिए दूसरे खंड में विचित्र पात्रों की सफलताएं सपाट हो गई हैं। दूसरे भाग में भी जहां तक देश में फैले भ्रष्टाचार का प्रश्न है उसे अत्यंत निपुणता से चित्रित करते हुए विश्वसनीय बनाया गया है और इस भ्रष्टाचार का आरंभ नेताओं, प्रशासनिक यंत्रों, योजना आयोगों से होता हुआ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हो गया है। उपन्यास प्रकाशित होने के बाद भी सूद जैसे कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। व्यक्ति आत्मनिष्ठ और स्वार्थी बनता जा रहा है। पहले और दूसरे दोनों भागों में कम्युनिस्ट पार्टी को तरजीह दी गई है किंतु पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रक्षा समितियों और शांति सभाओं के अतिरिक्त कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। उनका काफी वक्त बहस करने में गुजर जाता है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं तारा, पूरी और कनक। पूरी और तारा भाई बहन है, यह एक परिवार है। इनसे भिन्न कनक का परिवार दूसरा है। उपन्यास के दोनों भागों का कथानक इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द बुना गया है। वतन और देश भाग में लाहौर की भोला पांधे गली में रहने वाले अनेक परिवारों के साथ इन दो परिवारों के टूटने, अमानुषिक अत्याचार सहने और अंततः उद्भासित होने की कथा है। तो देश के भविष्य के मुख्य पात्रों के भारत आने, निरंतर संघर्षों के जूझने और नई परिस्थितियों में अपने को स्थापित करने की, भोला पांडे की गली में रहने वाले निम्न मध्यवर्ग की स्त्रियों की रूढ़ियों, रहन सहन, आचार विचार, नोक झोंक, टीका टिप्पणियों आदि के यथार्थ का इतना प्रभावशाली और संश्लिष्ट चित्र शायद ही कहीं मिले। यह परिवेश स्त्रियों पुरुषों की दोगली नैतिकता का निर्माण करता है और इनका वर्ग चरित्र स्पष्ट परिलक्षित हो उठता है। इस उपन्यास में स्त्री को लेकर नैतिकता का प्रश्न पुनः उठाया गया है, किंतु इसमें दादा कामरेड, देशद्रोही आदि उपन्यासों की स्त्रियों की भांति इश्क लड़ाने वाले बुर्जुआ नैतिकता का स्वैर विहार नहीं है, बल्कि तारा और कनक को परिस्थितियों के संघर्ष में चुनने की शक्ति प्राप्त होती है। वर्ग नैतिकता की बाल की खाल निकालने वाले उत्साही विचारकों की दृष्टि में तारा का डॉक्टर प्राणनाथ को चुनना और कनक का एक झटके में पूरी के संबंध से विच्छेद कर लेना वर्ग चरित्र के विरुद्ध है। बुर्जुआ वर्ग के डॉक्टर प्राणनाथ नैतिक दृष्टि से उन्नत कैसे हो सकते हैं? कनक का अपने पति पूरी को दूसरी स्त्री के साथ सोया देखकर माफ कर देना तो उसकी वर्गीय नैतिकता के अनुरूप समझा जाता है कि पूरी के अन्य तुच्छपन से समझौता न करना इसके विपरीत घोषित किया जाता है। मनुष्य के आचार निर्माण में वर्ग के योग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु यह कोई मंत्र कीलित रेखा नहीं है कि इसे पार ही न किया जा सके। कनक के प्रसंग द्वारा यशपाल तथा कथित यौन नैतिकता से कहीं अधिक महत्व सामाजिक नैतिकता को देते हैं। इस महत्वाकांक्षी उपन्यास की त्रुटि इस तथ्य में निहित है कि यह सच ज्यादा है, झूठ कम। सच के बंदी गृह से मुक्त होकर ही कला कला हो पाती है, क्योंकि झूठ, कल्पना और रचनात्मकता अपने संश्लिष्ट संबंधों में साहित्यिक यथार्थ में परिणत होती है। मात्र सच का परिणाम हुआ है कि इतिहास की सीमाओं को लांघकर सीधी रेखा को छोड़कर यह जीवन के चौथे आयाम की जटिलता में प्रवेश नहीं करता। फलस्वरूप कला और सच के जटिल किंतु दिलचस्प रिश्ते का निर्वाह नहीं करता। फिर भी अपने महाकाव्य, महाफलक और व्यापक ऐतिहासिक बोध के कारण आधुनिकवादी उपन्यासों के लिए चुनौती बनकर आता है। मेरी तेरी उसकी बात 1974 कांग्रेस आंदोलन के उबाऊ इतिवृत्तों, बेमेल तथ्यों, नाम स्थानों, परिवारों के आंकड़ों से भरा पड़ा है। झूठा सच के प्रकाश में यह उपन्यास और भी स्त्रीहत हो जाता है। 12 घंटे सन 1963, अप्सरा की सांप सन 1965 और क्यों फंसे 1968 सामान्य उपन्यास है।